चैप्टर 11। अब आगे। लगता है मिस्टर सिंघानिया उस लड़की को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। देखो, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ। अब उस लड़की की तरफ पलट कर भी मत देखना, क्योंकि मैंने मिस्टर सिंघानिया की आंखों में उस लड़की के लिए एक अलग ही पागलपन देखा है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मिस्टर सिंघानिया की धमकी को लाइटली मत लो और उस लड़की की तरफ कभी मुड़कर ना देखो। वैसे भी तुम्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जो अपनी मर्जी से तुम्हारे करीब तुम्हारे बिस्तर तक आने को तैयार रहेंगी। इतना बोल मैना एक नज़र वीनो को देख वहां से चली जाती है। वहीं मैना के जाने के बाद वीनो अपनी आंखों में देवांश के लिए गुस्सा लिए खुद से ही बोला, मिस्टर देवांश सिंघानिया, अगर तुम्हें वे लड़की पसंद है तब तो मैं उस लड़की के साथ रात जरूर बिताऊंगा, जिसके मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और अभी अभी जो तुमने मेरी बेइज्जती की है उसका हिसाब भी पूरा हो जाएगा। इतना बोल वे भी वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कॉलेज में रूही और परी दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। उसके बाद दोनों अपनी क्लास के लिए क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं, मगर जैसे ही वे रूही क्लास में अपना पहला कदम रखती है वैसे ही वे फिसलकर गिरने लगती है। मगर वे गिर पाती तभी एक लड़का जो दिखने में बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था वे आकर रूही को पकड़ उसे गिरने से बचाते हुए कहता है, मैम आप ठीक तो है ना? रूही जो गिरने के डर की वजह से काफी डर गई थी, वे जब खुद को गिरता हुआ नहीं पाती है तो चैन की सांस लेती है। फिर अच्छे से खड़े हो अपने आप को संभालते हुए वे सामने देखती है तो निहारिका, राजीव, नेहा उसे ही देख मुस्कुरा रहे थे। वहीं जय और बाकी के स्टूडेंट अपनी शीट पर चुपचाप बैठे इस नज़ारे को देख रहे थे। वहीं परी जो रूही के गिरने की वजह से काफी घबरा गई थी वे रूही के पास आते हुए जल्दी से पूछती है, रूही तू ठीक तो है ना? परी की बात सुनकर रूही जैसे ही हाँ बोलने को होती है वैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े केले के छिलके पर जाती है जिस पर पैर रखने की वजह से वे गिरने वाली थी। वे उस केले के छिलके को देख अभी सोच ही रही थी कि ये केले के छिलके यहाँ पर कैसे आए, तभी उसकी नज़र निहारिका और उसके दोस्तों के मुस्कुराते हुए चेहरे पर जाती है जिसके वे सब कुछ समझ जाती है और गुस्से में निहारिका के पास आ उसे देखते हुए कहती है, निहारिका तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गिराने की कोशिश करने की, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? रूही की बात सुनकर निहारिका मुस्कुराते हुए रूही के गालों को टैप करते हुए कहती है, रूही बेबी तुम्हें कुछ हो जाए इसीलिए तो ये सब मैंने किया है, पर अफसोस इस बार तुम बच गई मगर नेक्स्ट बार का क्या भरोसा। निहारिका की बात सुनकर रूही कुछ बोलती उसके पहले ही परी बीच में आते हुए कहती है, अगर मेरी रूही के साथ तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश थी या उसके साथ तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो मेरी एक बात याद रखना कि हम तुम्हें कोई सजा दें या ना दें पर वे तुम्हें ऐसी सजा देंगी कि तुम अपनी हर एक सांस के लिए तड़पोगी, इसीलिए रूही से दूर रहना। इतना बोल रूही का हाथ पकड़ उसके साइड से होते हुए उसे थोड़ा सा धक्का दे अपनी शीट पर रूही को ले बैठ जाती है। वहीं परी के धक्का देने की वजह से निहारिका गिरते गिरते बची थी जिसके वे गुस्से में अपने दांत पीस लेती है और आकर जय के बगल में बैठते हुए बोली, जय तुम इस लड़की के साथ कुछ करते क्यों नहीं हो, तुमने देखा ना कि वे लड़की मेरी किस तरह बेइज्जती करके गई है। निहारिका की बात को सुनकर जय उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने उसे किडनैप कर उसे मारा था वे कोई मामूली लोग नहीं थे, जिसके उसे समझ में आ गया था कि रूही के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर है, इसलिए वे अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझता, बस धीरे धीरे रूही को समझने की कोशिश करने लगता है। तभी वे लड़का जिसने अभी अभी रूही को गिरने से बचाया था वे रूही के पास आ उसे देखते हुए बोला, मैम क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ क्योंकि बाकी के सारे शीट फुल हो चुके हैं। वे लड़का जिसका नाम शांतनु था, रूही उसकी बात सुनकर अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है तो देखती है कि सच में कोई शीट खाली नहीं थी, जिसे देख रूही अपना सर हिलाकर अपनी जगह से थोड़ा साइड हो शांतनु को बैठने को कहती है, जिसे देख शांतनु थैंक्स यू बोल बैठ जाता है। वहीं परी शांतनु को ऊपर के लेकर नीचे तक देखती है जो शर्ट पैंट पहने अपने बालों में ढेर सारा जल लगाए आंखों में बैटरी वाला चश्मा लगाए हुआ था, जिसे देख परी का हल्का सा मुंह बन जाता है लेकिन फिर भी वे शांतनु को देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? परी की बात सुनकर शांतनु मुस्कुराते हुए अपना नाम बता देता है, जिसे सुन परी अपना और रूही का नाम बताते हुए बोली, तो शांतनु देखो हम अपने ग्रुप में लड़कों को नहीं रखते लेकिन तुमने आज रूही को गिरने के बचाया है तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बैठने दे रही हूँ। परी की बात सुनकर शांतनु कुछ भी नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है, पर उसकी मुस्कुराहट कुछ मिस्टीरियस लग रही थी। वे अभी कुछ बोलता उसके पहले ही प्रोफेसर आ जाते हैं, जिसे देख सब शांत हो जाते हैं और लेक्चर पर ध्यान देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में देवांश दिशा के हाथ को मजबूती से पकड़ उसे कार के पास ले जाने लगता है, जिसे देख दिशा अपने हाथ को छुड़वाते हुए देवांश की तरफ देख गुस्से से बोली, सर ये क्या बात तमीजी है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। देवांश की बात सुनकर दिशा की पकड़ दिशा के हाथ पर और मजबूत हो जाती है और वे दिशा को देख अपनी सर्द आवाज में बोला, मिस दिशा, अगर आप नहीं चाहती कि यहाँ सबके सामने कोई भी तमाशा हो तो चुपचाप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझे तो किसी भी तमाशे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको उसके बहुत फर्क पड़ सकता है। देवांश की बात सुनकर दिशा अपने चारों तरफ देखती है तो कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिसे देख दिशा अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, क्योंकि उसे मालूम था कि देवांश को किसी भी तमाशे से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसका यहाँ तमाशा जरूर बन सकता था, इसलिए वे देवांश से कुछ नहीं कहती। जिसे देख देवांश दिशा का हाथ पकड़ कार के पास ला उसे बैठाता है, फिर खुद भी बैठ जाता है, जिसे देख ड्राइवर कार स्टार्ट कर होटल के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद देवांश की कार होटल में आ रुकती है, जिसे देख देवांश गाड़ी से उतर जाता है, फिर दिशा की तरफ जा उसकी तरफ का दरवाजा खोल उसका हाथ पकड़ बाहर निकालता है और उसे ले होटल के अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ देर में देवांश दिशा को ले अपने रूम में पहुंचता है, जिसे देख दिशा एक झटके में देवांश से अपना हाथ छुड़वा लेती है। देवांश के हाथ छुड़वाने के बाद ही दिशा अपने हाथ को देखती है, जो खून की तरह लाल हो गया था, क्योंकि देवांश ने उसे काफी तेजी से पकड़ा हुआ था। जिसे देख दिशा अपने हाथों को दूसरे हाथ से सहलाते हुए गुस्से में बोली,
सर, आपकी हिम्मत कैसे हुई यूं मेरा हाथ सबसे सामने पकड़ने की।